صفحہ نمبر 30 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب عنوان اللہ کے سفیر، یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے آپ کے لیے شمسہ غزالہ ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے سفیر کو خان آصف نے تحریر کیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، تاریخ پیدائش 604 ہجری، تاریخ وفات 670 ہجری، مزار مبارک قونیہ ترکی۔ جلال الدین نام روم اور رومی تخلص، بلخ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی، جو اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو مولانا کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک درویش کی نگاہ حکیمیہ تاثیر نے ہوش و خرد کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا کہ مولانا جلال الدین رومی بے اختیار پکار اٹھے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مثنوی مولانا روم کو دنیا کے ادب عالیہ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، مگر شاعری کی کسی کتاب کو اس قدر احترام کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اپنے وقت کے دونوں سپر پاورز ایران اور روم اہل اسلام کے ہاتھوں شکست و بربادی سے دوچار ہو کر پستل پارینہ بن چکی تھیں اور ان کے مرثیہ خواہ تک باقی نہیں رہے تھے۔ اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اہل ایمان صرف آخرت ہی میں کامیاب و کامران نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی انہیں اقتدار اعلیٰ بخشا جائے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا عروج اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں تھی اور بڑے بڑے تاج و تخت ان کی ٹھوکروں سے پامال ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت کے انبار دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے۔ سر دربار کسی شخص نے عرض کیا تھا، امیر المومنین، انتہائی خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو؟ جواب میں خلیفہ ثانی نے فرمایا تھا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں وہاں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تمہیں مال و زر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھیں، عظیم الشان محل تعمیر کیے جا رہے تھے، مگر کاشانہ دل ویران ہوتا جا رہا تھا۔ دیواروں میں قیمتی فانوس بھی آویزاں تھے، مگر دماغوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ جس قوم کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہی قوم کنیزوں کے خوبصورت جسموں سے اپنے حرم سجا رہی تھی۔ پھر ایک دن بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب چیختا پھر رہا تھا، لوگوں خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، چنگ و رباب توڑ دو اور شراب کے ذخیرے نالیوں میں بہا دو، ورنہ قدرت کا پیمانہ برداشت چھلکنے والا ہے۔ عذاب کے دن گنے جا چکے ہیں، بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سرکشی چھوڑ دو، نہیں تو تمہاری کاندھوں سے گردنوں کے بوجھ کم کر دیے جائیں گے، بڑا خون بہے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مجذوب کی لہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں لوگ اسے پاگل سمجھ کر ایک دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتے رہے، مگر وہ دیوانہ تو بڑے پتے کی باتیں کر رہا تھا، بڑے خوفناک راز فاش کر رہا تھا۔ آخر عشرت قدوں میں رہنے والوں کو اس وحشی کے نعرے گراں گزرنے لگے۔ مجذوب سے کہا گیا وہ نعرہ زنی بند کر دے، اس کی بے ہنگم آوازوں سے شرفا کے سکون میں خلل پڑتا ہے، وہ کس عذاب کی باتیں کرتا ہے؟ عذاب ہمیں چھو کے بھی نہیں گزر سکتا، ہم اہل ایمان ہیں۔ کئی بار تنبیہ کی گئی لیکن مجذوب نے اپنا چلن نہیں بدلا۔ وہ پریشان بالوں اور بسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہر گلی کوچے میں چیختا پھر رہا تھا، اے بے خبروں، سرخ آندھی آنے والی ہے، اس کے تیز جھونکوں میں تمہارے پتھروں کے مکان روئی کے تیز گالوں کی مانند اڑ جائیں گے، اب اس قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ موت کی خبریں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر معززین شہر نے مجذوب کی باتوں کو بدشکونی کی علامت قرار دے کر ایک سنگ دلانہ حکم جاری کر دیا۔ اب وہ بے ضرر انسان جدھر جاتا تھا لوگ اس پر غلاظت پھینکتے تھے، مجذوب ان کی اس حرکت پر قہقہے لگاتا تھا، میرے جسم پر گندگی کیا اچھالتے ہو، اپنے مست چہروں اور غلیظ لباسوں کی طرف دیکھو، عنقریب ان پر سیاہی ملی جانے والی ہے، اور کچھ دن خدا کے نظام کا مذاق اڑا لو، پھر وقت تمہارا اس طرح مذاق اڑائے گا کہ تم موت کو پکارو گے مگر موت بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی۔
اس کے بعد لوگ تشدد پر اتر آئے. مظلوم جہاں سے گزرتا تھا جوان اور بچے اس پر پتھر برساتے تھے. لاغر اور نحیب جسم اپنے خون میں نہا گیا. بس مست انسانوں کے قہقہے بلند ہوئے. مجذوب بغداد کی ایک آباد شاہراہ پر کھڑا لڑکھڑا رہا تھا. اس کے خون رنگ تماشے دیکھنے کے لیے سینکڑوں انسان جمع ہو گئے تھے. مجذوب نے ہجوم کی طرف دیکھا اور بڑے اداس لہجے میں بولا, کیا تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان سنگ دلوں کو منع کرے اور میری طرف آنے والے پتھروں کو روک لے؟ مجذوب کی فریاد سن کر لوگوں کے قہقہے کچھ اور بلند ہو گئے. کسی نے سنگ باری کرنے والوں کو منع نہیں کیا. پورے مجمع کا ضمیر مر چکا تھا. عذاب لکھا جا چکا. مجذوب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخا. لکھنے والے نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا, آگ, خون, ذلت اور بربادی. پھر مجذوب نے بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر مر لیا اور چند پتھر اور برسے. مجذوب زمین پر گر پڑا. مسخرہ آسمان کی خبریں دیتا ہے. لوگ دیوانہ وار ہنس رہے تھے. یہ خبر نہیں کہ خود اپنا کیا حال ہونے والا ہے. ایک مجبور انسان پر مشق ستم کرنے کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا. مجذوب کے جسم سے خون بہ بہ کر زمین پر جمتا رہا. آخر بغداد کے باہوش شہریوں نے ایک دیوانے سے نجات حاصل کر لی. اس دن کے بعد پھر کسی نے مجذوب کو نہیں دیکھا. وہ اپنا کام ختم کر کے بہت دور جا چکا تھا. شہر کی فضائیں نغمہ بار تھیں. موسیقی کی پرشور آوازوں نے گناہ کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کر دیا تھا. سیم و تن بدنوں کے رقص نے جذبات کی دنیا میں وہ طوفان اٹھائے تھے کہ اہل اقتدار کی بینائی زائل ہو گئی تھی اور عمرا اندھے ہو گئے تھے. سرزی محافظوں کے بازو شل ہو گئے تھے اور تلواریں شاخ گل کی مانند لہرا رہی تھیں. اور پھر اہل بغداد کو قہر خداوندی نے آ پکڑا. ہلاکو خان رات کے اندھیروں میں شمشیر بکف آگے بڑھ رہا تھا اور عظیم الشان اسلامی سلطنت کے نگبان ہاتھوں میں چنگ و رباب لیے ہوئے جھوم رہے تھے. پھر ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بڑھ اٹھی. سنگ سرخ سے بنے ہوئے سرب فلک محلات میں آگ لگی ہوئی تھی اور علم و حکمت کے ذخیرے سوکھی لکڑیوں کی طرح جل رہے تھے. شاندار تہذیب و تمدن کے تمام آثار وحشیوں کے نیزوں کی زد پہ تھے. ہلاکو خان کے سامنے عالمانہ تقریریں کرنے والے بے شمار تھے, مگر وہ تلوار کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا. اس فتنہ عظیم کو صرف جرت و شجاعت کے ہتھیاروں سے روکا جا سکتا تھا, مگر مسلمان بہت پہلے ان ہتھیاروں کو زنگ آلود سمجھ کر اپنے اسلحہ خانوں میں دفن کر چکے تھے. اس لیے چنگیز خان کا صفاق پوتا مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا اور اہل بغداد ایک درندے سے تہذیب و شائستگی کی زبان میں رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے. پھر یوں ہوا, آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا. اب ہلاکو خان کا رخ نیشاپور کی طرف تھا. یہاں بھی موت کی سرخ آندھی نے تباہی مچا دی. علم و حکمت کے کیسے کیسے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. جن لوگوں نے کچھ دن پہلے بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب کو چیختے ہوئے دیکھا تھا, آج انہیں اس پاگل انسان کی باتیں یاد آ رہی تھیں. مگر وقت گزر چکا تھا. اچانک خبر آئی کہ تاتاریوں نے حضرت شیخ فرید الدین اتار جیسے بزرگ کو بھی شہید کر دیا. معرفت کا یہ مینار کیا گرا کہ گھروں میں سہ ہوئے مسلمان موت کے خوف سے کانپنے لگے. اب ان کے درمیان سے وہ شخص بھی اٹھ گیا تھا جس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی تھی. دوسری جان گداز خبر آئی کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا نے بھی جام شہادت پی لیا. اس طرح کیا آپ نے خانقاہ سے باہر آ کر آخری سانس تک ہلاکو کی فوج سے جنگ کی اور مرتے وقت اپنی قوم کو ایک پیغام دیا کہ مکانوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں نکل آؤ. حضرت نجم الدین کبرا کی شہادت نے مسلمانوں کی امید کی آخری کرن بھی بجھا دی تھی. معرفت کے اس بلند ترین مینار کے زمین پر گرتے ہی زلزلہ آ گیا تھا اور ظلم و ستم کی رات مزید طویل ہو گئی تھی. خون کا سیلاب راستہ بناتا ہوا مسلمانوں کے سرسبز و شاداب علاقوں سے گزر رہا تھا. اب ہلاکو خان کے لہو آشام لشکر کا رخ روم کے شہر قونیا کی جانب تھا. اس لشکر کی سالاری بیجو خان کو سونپی گئی تھی. بیجو خان نے اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں اور قونیا کا مکمل محاصرہ کر لیا. چند روز تو کہ اہل شہر کو خوف و دہشت کے سوا किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। जब मगर जब महासरे ने तूल पकड़ा तो कौनिया के बाशिंदों का सामान्य रसद बंद हो गया, जिससे हर तरफ बदहवासी फैल गई। पहले शहर में मशवरे होने लगे। किसी ने कहा, बेचू खान से मसाहलत की बात की जाए और उसके मुतालबात मानकर इस अजाब से निजात हासिल की जाए। फौरन ही दूसरे शख्स ने जवाब दिया, हलाकू खान मुसलमानों के खून का प्यासा है। वो अलल ऐलान खुद को खुदा का कहर कहता है। इसके नजदीक अमन व आफियत जैसे अल्फाज कोई मफहूम नहीं रखते। फिर क्या होगा? हर जबान पर एक ही सवाल था। आखिर जब तमाम जहन सोचते सोचते मफलूज हो गए तो अमीरों की महफिल में एक परेशान हाल शख्स दाखिल हुआ। इस मुफलिस इंसान को देखकर दौलतमंदों की पेशानियों पर बल पड़ गए, मगर वो लोगों के एहसास से बेनियाज अंदर चला आया और बदमस्तों के दरमियान खड़े होकर बारोब लहजे में कहने लगा, लोगों तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने एक हम मजहब को देखकर बदहवास हो गए हो। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ कि मुझे देखकर तुम्हारे चेहरों पर नफरत बरसने लगी है। इसी तंगदिली और बेजमीरी ने तुम्हें ये खौफनाक दिन दिखाए हैं। तुम अपने शरद कदों में शराब सुर्ख से दिल बहलाते रहे और मखलूक खुदा अपने खून में नहाती रही। अब दौलत के ये जखीरे लेकर कहाँ जाओगे कि जमीन तुम पर तंग हो चुकी है और आसमान बहुत दूर है। ये कहकर वो अजनबी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। पूरी महफिल पर सुकूत मर्ग ताजी था। हर शख्स के चेहरे से जाहिर होता था जैसे वो नजा की हालत में गिरफ्तार हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि इस कहरे आसमानी का बस एक ही इलाज है, अजनबी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। हाँ हाँ हमें बताओ, तमाम उम्रा बयक जमान चीखे। हम अपने सेम और जर के सारे अंबार लुटा देंगे। खुदा के लिए हमें इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाओ। हम गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मरते हैं और फिर दूसरी साथ में जी उठते हैं। हलाकू खान की दहशत हमें वक्त से पहले मार डालेगी। सबके सब गदागदरों की तरह चीख रहे थे। इस दरवेश के पास जाओ जो तुम्हारी शत कदों पर थूक कर अपनी खानकाह में गोशा नशी हो गया है, अजनबी ने नहायत तल्ख लहजे में कहा। इसके एक एक लफ्ज से अहले महफिल के लिए शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। वो तुम्हारे सेम उजर के जखीरों का मोहताज नहीं, वो तो खुद शहनशाह है। ऐसा शहनशाह जिसके सामने हलाकू के सिपाही भी हकीर कीड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इसके पास जाओ, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मुमकिन है कि तुम्हारे सरों पर आग के शोलों की बजाय अबरे रहमत बरस जाए। अल्लाह इसकी बहुत सुनता है। अजनबी की बातें सुनकर अहले मजलिस बदहवासी के आलम में खड़े हो गए। वो इसी वक्त दशवेश के आस्ताने पर हाजिर होना चाहते थे। सुनो, अजनबी ने पुकार कर कहा, वो आसानी से नहीं मानेगा। उसके दरवाजे पर भिखारियों की तरह जाना, वो तुम्हारी कीमती पोशाकों और जर निगार कबाओं से नफरत करता है। ये कहकर अजनबी महफिल से निकल गया। थोड़ी दूर तक लोगों ने उसे जाते देखा और फिर वो अचानक नजरों से गायब हो गया। तमाम लोग इस बात पर हैरान थे कि वो कौन था, क्यों आया था और यकायक कहाँ गायब हो गया। ये एक बड़ा अहम वाकया था, मगर लोगों के पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। वो इंसान ही सही, लेकिन फरिश्ता ये रहमत बनकर आया था। इसने आग और खून के दरमियान घिरे हुए लोगों को सलामती की राह दिखाई थी। अब कौनिया के मौजिज़ीन और शुरफा की जमात इस दरवेश के आस्थाने की तरफ बढ़ रही थी। फासले खत्म हुए, इजाजत तलब की गई। दरवेश फितरतन मेहमान नवाज था, उसने अपने हमवतनों को अंदर बुला लिया। लोग कांपते कदमों से दरवेश के रूबरू पहुंचे। उनकी आंखों की पुतलियां लरज रही थीं और चेहरे मौत के खौफ से जर्द थे। बाज ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने आने का मकसद बयान किया, मगर इस तरह कि उनकी आवाज लरज रही थी। मेरे पास क्यों आए हो? दरवेश ने बेजारी के लहजे में कहा। इस कायनात में मेरी क्या हैसियत है? तुम इसकी बारगाह में क्यों नहीं गए जो लोहे महफूज का मालिक है, जिसके एक इशारे पर तकदीरें बनती और बिगड़ती हैं? शेख, वो हमारी नहीं सुनता, कौनिया के उमरा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे लिए दरे तौबा बंद हो चुका है। ये सब गलत है। अगरचे दरवेश के होंठों पर हर वक्त एक दिलनवाज तबस्सुम नुमाया रहता था, मगर वो कौनिया के उमरा की बात सुनकर यकायक गजबनाक हो गया। कोई नहीं जानता कि दरे तौबा कब बंद होगा। जाओ उसी को पुकारो, वही अपने बंदों की सुनता है। अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर इस कायनात में कौन सुनने वाला है? उमरा ने महसूस कर लिया
कि दरवेश अपना दामन बचा रहा है। अजनबी ने इन्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि दरवेश आसानी से इनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो मजीद गरिया उजारी करने लगे। आसमान से हमारी फरियादों का जवाब नहीं आता शेख, हम तेरे आस्ताने से वापस नहीं जाएंगे। अगर मौत हमारा मुकद्दर बन चुकी है तो फिर हम तेरे कदमों में मर जाना पसंद करेंगे। तुमने देखा कि हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार शहीद कर दिए गए। हजरत नजमुद्दीन कुबरा अपने खून में नहाकर खालिक हकीकी से जा मिले। मैं तो इनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ, फिर तुम्हारे लिए किस तरह दुआ करूँ। कैसे कैसे पारसा इस फितने अजीम में जिंदगी से महरूम हो गए। जब उनकी दुआएं कहल आसमानी को ना रोक सकी तो फिर मैं किस शुमार में हूँ। दरवेश बड़े दर्दनाक लहजे में अपनी आजिजी का इजहार कर रहा था, मगर लोग इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें सिर्फ अपने जान और माल की फिक्र थी। वो दरवेश के सामने बहुत देर तक गिरिया उजारी करते रहे। आखिर वो दरवेश मजबूर हो गया। इससे मखलूक़ खुदा की चीखें नहीं सुनी जाती थी। वो उठा और अपना मुसल्ला लेकर खानकाह से निकल गया। लोगों ने बड़ी हैरत से दरवेश के तर्ज अमल को देखा। वहां मौजूद हर शख्स यही समझ रहा था कि दरवेश इनके शोर वहां से तंग आकर खानकाह को छोड़कर चला गया है। पूरे मजमे पर कुछ देर के लिए सुकूत मर्ग सा तारी रहा। फिर तमाम लोग खानकाह से बाहर निकल आए और दरवेश को देखने लगे, जो सारी दुनिया से बेनियाज तेज तेज कदमों के साथ एक सिम्त चला जा रहा था। कौनिया के तमाम शरफा और उमरा दरवेश को खामोशी से देखते रहे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके पीछे जाते। बस दरवेश के चंद खादिम बेकरार होकर अपने मखदूम के पीछे भागे। इनके लिए इस मर्द कलंदर का ये अंदाज नाकाबिले फहम था। खादिम दरवेश के करीब पहुंच गए, मगर इससे ये पूछने की जुर्रत ना कर सके कि वो कहाँ जा रहा है। दरवेश जिस तरफ से भी गुजरता था कुछ लोग इसके हमरा हो जाते थे, मगर उसने नजर उठाकर भी इनकी तरफ नहीं देखा। अब वो शहर की हदूद से बाहर निकल आया था। इसके हमरा चलने वाले खौफ से लरजने लगे। सामने हलाकू के सिपह सलार बीचुखान का लश्कर नजर आ रहा था। दरवेश का यक मुड़ा और उन लोगों से सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। तुम अपने घरों को वापस जाओ, क्या ये कोई तमाशा हो रहा है? इस कहरे आसमानी से खुदा की पनाह मांगो। ये कहकर दरवेश आगे बढ़ा। उसका अनजाना सफर दोबारा शुरू हो गया था। साथ जाने वाले उसी मुकाम पर रुक गए जहां उसने ठहर जाने का हुक्म दिया था। दरवेश आगे बढ़ता रहा, जहां तक कि वो मंगोल लश्कर के करीब तर होता चला गया। तमाम अहले शहर और खादिम जो इस वक्त वहां मौजूद थे, खौफ और दहशत से कांपने लगे। दरवेश का नातवां जिस्म मंगोल तीर अंदाजों के निशाने पर था। तातारियों के तरकिश से निकला हुआ एक तीर भी दरवेश का काम तमाम कर सकता था, मगर वो मर्दे खुदा आज हर शहर से बेनियाज था। इसके कदम तेजी से उठ रहे थे। फिर वो कौनिया के इन बाशिंदों की नजरों से ओझल हो गया, जो उसे बीचू खान के लश्कर की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। फासले मजीद कम हो गए थे। दरवेश एक बुलंद टीले पर चढ़ने लगा। इस टीले के दूसरी तरफ तातारियों का लश्कर खेमजन था। दरवेश चोटी तक पहुंचा, फिर इसने अपने अतराफ पर नजर डाली। दूर तक मंगोल सिपाही बिखरे हुए थे और निगाहों के सामने सिपह सलार बीचू खान का खेमा था, जो दूसरे खेमों से ज्यादा वसी और नुमाया नजर आ रहा था। दरवेश ने टीले पर मुसल्ला भिजा दिया। एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और नमाज की नीयत बांध ली। अभी चंद सातें भी ना गुजरी थी कि किसी तातारी की नजर दरवेश पर पड़ी। उसने अपने दूसरे साथी से कहा। फिर देखते ही देखते सैकड़ों मंगोल सिपाही टीले की तरफ मुतवज्जा हो गए, जहां एक मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत में मशगूल था। दुश्मन फौजी उसकी इबादत का मफहूम तो नहीं समझ सके, मगर उन्हें यह ख्याल जरूर हुआ कि वो कोई मुसलमान जासूस है जो बीचू खान के लश्कर की मुखबरी करने आया है। इस ख्याल के पैदा होते ही मंगोल सिपाहियों में हलचल मच गई। अगरचे दरवेश तनहा था, लेकिन जंगी उसूल के मुताबिक इसकी मौजूदगी नहायत खतरनाक थी। सिपाहियों ने अपने कांधों पर लटकती हुई कमानें उतार ली, बर्फ रफ्तारी के साथ तीर चढ़ाए, पूरी कुव्वत का मुजाहरा किया, मगर कोई एक कमान भी न खींच सकी। तंग आकर कुछ सिपाहियों ने अपने घोड़ों को इस्तेमाल करना चाहा कि टीले पर पहुंचकर मुसलमान दरवेश को तलवारों से कत्ल कर डाले, लेकिन इस वक्त मंगोल सिपाहियों की बेचारगी काबिले दीद थी। जब इनके घोड़े अपनी जगह से जुबिश तक ना कर सके, तातारियों ने बेजबान जानवरों को पीटना शुरू कर दिया।
फिजा में घोड़ों की चीखें बुलंद होती रही, मगर उन्हें एक कदम भी आगे ना बढ़ मगर उन एक कदम भी आगे ना बढ़ाया जा सका। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। सारे लश्कर में एक हंगामा सा बरपा हो गया। सिपाहियों का शोर सुनकर बीचू खान भी अपने खेमे से बाहर निकल आया। सिपाहियों से इस हंगामे का सबब दरियाफ्त किया तो बेशुमार उंगलियां टीले की तरफ उठ गईं, जहां दरवेश अब भी अपने खुदा के आगे हाथ बांधे खड़ा था। ये कैसी दीवानगी की बातें हैं, बीचू खान ने चीख कर कहा। कोई भी जीहोश इंसान तुम्हारी अहमकाना गुफ्तगू पर यकीन नहीं कर सकता। ये कहकर बीचू खान ने एक सिपाही से तीर कमान तलब किया। वो एक माहिर तीरंदाज था। हलाकू के पूरे लश्कर में इसकी ये सिफत मशहूर थी। तमाम सिपाही हैरान और परेशान बीचू खान की तरफ देख रहे थे। इनकी सांसें रुकी हुई थीं और जहनों में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अगर मंगोल सिपाही सलार मुसलमान जासूस को हलाक करने में कामयाब हो गया तो फिर क्यामत टूट पड़ेगी। उसकी वहशियाना आदतों से वाकिफ थे। आखिर बीजू खान ने अपनी कमान खींची और एक कहर आलूद नजर इन सिपाहियों पर डाली, जिनका ये दावा था कि वो अपनी कमानें खींचने से आजिज रहे थे। सिपाहियों की जान पर बनाई थी और अपने उन्हें अब अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। बीजू खान ने पूरी ताकत से कमान खींची, फिर फिजा में एक मखसूस आवाज उभरी और तरकिश से तीर छूट गया। मंगुल सिपाही पथराई हुई आंखों से तीर को देख रहे थे। चंद सानियों की बात थी, तातानियों का ख्याल था कि दूसरे ही लम्हे मुसलमान जासूस की लाश टीले की बुलंदी से जमीन की पस्तियों में चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजू खान का छोड़ा हुआ तीर दरवेश के करीब से निकल गया। मंगोल सिपह सलार का चेहरा एहसास निदामत से जर्द हो गया। निशाना चूक जाने पर वो नाकाबिले बयान अजियत कर्ब में मुब्तिला था। शदीद गजब के आलम में उसने तरकिश पर दूसरा तीर चढ़ाया। इस बार कमान को यहां तक खींचा कि उसके टूट जाने का खतरा पैदा हो गया। निशाना दुरुस्त होते ही बीचू खान ने तीर छोड़ दिया, मगर इस मरतबे भी वही हुआ। तीर सीधा निशाने पर था, मगर दरवेश के करीब पहुंचते ही कटकर दूसरी तरफ निकल गया। इसके बाद से फैसलार बीचू खान अपने होश और हवास खो बैठा। फिर इसने मुसलमान जासूस पर तीरों की बारिश कर दी, लेकिन एक तीर भी दरवेश के जिस्म को ना छू सका। इंतहाई तैश के आलम में बीजू खान ने कमान उठाकर सिपाही के सर पर दे मारी और तेजी से अपने खेमे में दाखिल हो गया। तलवार निकाली और दोबारा खेमे से बाहर आया। वो मुसलमान जासूस को अपने हाथ से तह तह करना चाहता था। बीजू खान गजबनाक हालत में आगे बढ़ा, मगर बमुश्किल तमाम थोड़ी ही दूर जा सका। अचानक मंगोल सिपह सलार को महसूस हुआ जैसे जमीन ने इसके पांव पकड़ लिए हों। वो बहुत देर तक हवा में अपनी शमशीर लहराता रहा। इसके हाथ मुसलसल गर्दिश कर रहे थे, मगर टांगे पत्थर की होकर रह गई थी। आखिर वो अपनी बेकसी पर रो पड़ा। इसने घबराकर सिपाहियों की तरफ देखा, सबके सब सर झुकाए खड़े थे। ए जादूगर, हमें माफ कर दे, अचानक बीजू खान की तेज आवाज फिजा में गूंजी। हम कौनिया का मुहासरा उठाकर वापस जा रहे हैं। ए अजीम साहिर, हमें जाने दे कि हम गलती से तेरे इलाके में आ गए थे। हमारी भूल को दरगुजर कर बेशक तू इस मुमलिकत का शहनशाह है, हमें इजाजत दे कि हम अपने घरों को वापस लौट जाएं। मंगोल सिपह सलार बीचू खान इस तरह फरियाद कर रहा था जैसे वाकयतन वो किसी ताकतवर शहनशाह से रहम की भीख मांग रहा हो। अभी बीचू खान के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि यकायक इसके पैरों में खून की गर्दिश बहाल हो गई। मंगोल सिपह सलार ने अपनी तलवार नीचे कर ली और फिर सर झुकाए हुए खेमे में वापस आ गया। कुछ देर पहले जिस शख्स को जासूस के नाम से पुकारा जा रहा था, अब वही बेअसलहा और निहत्ता इंसान फातह ठहरा था, और बीजू खान जैसा ताकतवर दुश्मन नाकाम और नामुराद लौट रहा था। जब मंगोल सिपाही कोनिया की हदूद से बाहर निकल रहे थे, इस वक्त बीजू खान की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने फौजियों से कह रहा था, घोड़ों की रफ्तार तेज कर दो, ये पूरा इलाका जादू के जेर असर है। इस बूढ़े साहिर ने हर चीज को बांध कर रख दिया है। इन अल्फाज के अदा होते ही घोड़ों की पुश्त पर ताजियाने बरसने लगे। फिजा हैवानों की चीहों से गूंजने लगी। रास्तों से गर्दो गुबार उठा और फितना हलाकू का नकीब किसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ गया। शहर कौनिया के बाशिंदे बहुत खुश थे। एक दरवेश की दुआओं के सबब इनके सरों से अजाब आसमानी टल गया था। दरवेश अपनी खानकाह की तरफ आया तो इंसानी हुजूम ने इसे घेर लिया। लोग अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए इसके हाथों को बोसा देना चाहते थे, मगर वो इन तमाम रस्मों से बेजार था। इसने इंतहाई तल्ख लहजे में लोगों को मुखातिब किया, अगर आज नाफरमानों की जबात कहर खुदाबंदी से बच गई तो कल खैर नहीं। इससे पहले के दर्दनाक अजाब तुम्हें आ पकड़े, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। बेखबरों के लिए वक्त का हर लम्हा रेजन है, अपने ईमानों की हिफाजत करो, वरना वक्त के बेरहम कज़्ज़ाक तुम्हारा सबसे कीमती सरमाया लूट कर ले जाएंगे। ये कहकर दरवेश खानकाह में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुरीदों और खिदमतगारों ने सुना, वो अपने रब के हुजूर हिचकियों से रो रहा था। ए अजीज़ो जलील, तूने दुनिया के सामने मेरी शर्म रख ली, वरना ये गुनाहगार तो रुसवा हो चला था। अगर मैं अपनी जान भी नजर कर दूं तो तेरे इस एहसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता। जिनकी दुआओं के सबब शहर कौनिया फितना हलाकू से महफूज रहा, वो दरवेश मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे। मौलाना रूम का खानदानी नाम मोहम्मद था, जलालुद्दीन लकब और उर्फियत मौलाना मौलाए रूम। आप 604 हिजरी में बल्ख के मुकाम पर पैदा हुए। मौलाना रूम का सिलसिला नस्ब खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक तक बरहाए रास्त पहुँचता है। मौलाना रूम के परदादा हजरत हुसैन बल्खी बहुत बड़े सूफी और साहिब कमाल बुजुर्ग थे। उमराए वक्त इनका बहुत एहतराम करते थे, यहाँ तक के ख्वारज़म शाह जैसे बाजबरूत हुक्मरान ने अपनी बेटी की शादी मौलाना रूम के दादा से कर दी थी। इल्म व फजल के साथ इस खानदान को दुनियावी इज्जत व तौकीर भी हासिल थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद का नाम शेख बहाउद्दीन था। उनके मुरीदों में सैयद बुरहानुद्दीन एक नामवर आलिम थे, इसलिए मौलाना रूम की तरबियत की जिम्मेदारी सैयद बुरहानुद्दीन के सुपुर्द की गई। मौलाना रूम ने अक्सर ज़ाहिरी उलूम इन्हीं बुजुर्ग से हासिल किए। तकरीबन 19 साल की उम्र में मौलाना रूम अपने वालिद मोहतरम के साथ कौनिया तशरीफ ले आए। कुछ दिन बाद आप साये पिदरी से महरूम हो गए। शफीक व मेहरबान बाप से दायमी जुदाई एक बड़ा जानगुदाज सानिहा था, मगर अल्लाह ने मौलाना रूम को सब्र व ज़ब्त का हौसला अता फरमाया। आपने इस गम से निजात पाने के लिए खुद को किताबों में गुम कर दिया। फिर 629 हिजरी में जब मौलाना रूम की उम्र 25 साल थी, आपने मजीद तहसील इल्म के लिए शाम का रुख किया। यहाँ आप 7 साल तक मुकीम रहे और मुसलसल अपने इल्म में इजाफा करते रहे। फिर कौनिया वापस आ गए। इन्हीं दिनों आपके उस्ताद मौज़म सैयद बुरहानुद्दीन भी तशरीफ ले आए। फिर मौलाना रूम का इम्तिहान लिया गया। जब सैयद साहब को यकीन हो गया कि उनका शागिर्द ज़ाहिरी उलूम की तकमील कर चुका है, तो फिर एक दिन फरमाया, मखदूम ज़ादे अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हारे वालिद की अमानत तुम्हें लौटा दूँ। इसके बाद सैयद बुरहानुद्दीन ने आपको अपना मुरीद किया और तकरीबन 9 साल तक रूहानी तालीम देते रहे। सैयद बुरहानुद्दीन एक बाहोश बुजुर्ग और बुनियादी तौर पर एक आलिम व फाजिल शख्स थे, इसलिए तवील तरबियत के बाद भी मौलाना रूम की जिंदगी पर अकल का रंग गालिब रहा। दरअसल सैयद साहब यही चाहते थे और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फितरी तौर पर ज़हीन तरीन शख्स थे। वालिद मोहतरम की तालीम व तरबियत और फिर सैयद बुरहानुद्दीन की खुसूसी तवज्जो ने मौलाना को दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया था। अब आपका यह आलम था कि किसी इल्मी तकरीब में खिताब करने खड़े हो जाते तो लोग पत्थर की तरह साकित तो जामिद हो जाते और मौलाना की तकरीर इस तरह सुनते कि इन्हें अपने गर्दो पेश की भी खबर ना रहती। ये तारीख इंसानी का अजीब पहलू है कि हर दौर में हासिद और तंग नज़र लोगों की कसरत पाई जाती है। अगर आम इंसानी तबकों में ऐसे लोग पाए जाएं तो ये अमल ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, मगर जब उलेमा के दिल और दिमाग भीस बीमारी का शिकार हो जाएं तो फिर ज़मीन पर बेशुमार फितने सर उठाने लगते हैं। जब मौलाना रूम उलेमा की सफ़ों में नमदार हुए और आपने अपने कमालात का मुजाहरा किया तो मखलूक़े खुदा इस कदर गर्विदा हुई कि दूसरे अहले कमाल की अजमतों के चराग धुंधले होने लगे। ये बात उलेमा की एक जमात को सख्त नागवार गुजरी। फिर हज़्ब रिवायत मौलाना रूम की तहखीर करने के लिए एक खुफिया मंसूबा तैयार किया गया।
केसेट नंबर 30 का यहाँ इख्तिताम होता है। बकिया किताब अब आप केसेट नंबर 31 में सुनिए।